आरव और आयु की अच्छी खासी बहस हो चुकी थी। आरव जल्द से जल्द आशी से शादी करना चाहता था, जबकि आयु ऐसा नहीं चाहती थी। आरव और आशी की शादी रुकवाने के लिए आयु ने अपने घर वालों के सामने ये शर्त रखी कि वो आशी से बड़ी है, इसीलिए पहले उसी की शादी होगी। अपनी शर्त रखने के बाद आयु पूरे एटीट्यूड से वहां से जा चुकी थी, जबकि आरव उसे गुस्से में घूर कर जाते हुए देख रहा था। आरव आयु के पीछे जाना चाहता था, तभी उसे रोकते हुए विक्रम जी ने कहा, जाने दो उसे, वो जो कहकर गई है वो सच है। इस घर ने उसके साथ रिश्ते तोड़ लिए होंगे, लेकिन इस बात को नहीं बदला जा सकता कि वो इसी घर की बेटी है और आशी से बड़ी है, बोलते हुए उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने उनकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, पापा जी मैं कौन सा उसका हक छीन रहा हूँ। हाँ, मैंने सारी प्रॉपर्टी आशी के नाम कर दी, क्योंकि उसे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए था। वो चाहती थी कि वो अपना खुद का नाम बनाए और सब अपने दम पर करे। उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं भी उसके लिए मरा नहीं जा रहा। ये सब बातें होती रहेंगी आरव, तुम आओ डिनर करते हैं, शालू ने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा। मजबूरन आरव को डाइनिंग टेबल पर आना ही पड़ा। वो लोग साथ में खाना खा रहे थे। भले ही आयु ने बीच में टांग अड़ाई हो, लेकिन आशी को उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था। डिनर के बाद में अर्जुन ने कहा, अगर आयु यही चाहती है कि पहले उसकी शादी हो, तो ऐसा करते हैं, उसके लिए लड़का ढूंढ लेते हैं। अब वो खुद ही करियर से ज़्यादा अपनी शादी को इम्पोर्टेंस दे रही है, तो ये उसका डिसीजन है। बाकी देख लेंगे कि शादी एक ही दिन करनी है या अलग अलग। जैसे ही अर्जुन ने आयु के लिए लड़का ढूंढने की बात कही, आशी जल्दी से बोली, अरे नहीं पापा, आपको उसके लिए किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वो अपने सीनियर डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में है, तो उसी से शादी करेगी। आशी ने जल्दबाजी में उन्हें बता तो दिया था, फिर उसने शालू की तरफ देखा। अर्जुन थोड़े सख्त मिजाज थे, इसीलिए अब उसे उनसे डर लग रहा था। शालू बात को संभालती उससे पहले आरव बीच में बोल पड़ा, ये तो अच्छी बात है ना, उसने अपने लिए लड़का ढूंढ रखा है, तो ऐसा कीजिए अंकल, आप एक ही मंडप में हम सबकी शादी करवा दीजिए, आपकी बेटी की जिद भी पूरी हो जाएगी और मेरी बात भी रह जाएगी। हाँ ठीक है, इस बारे में कल बात करते हैं, अभी तुम सोने के लिए जाओ और अपने पेरेंट्स से बात करके उन्हें यहाँ आने का बोल देना, कल इस बारे में बात करते हैं, अर्जुन ने जवाब दिया और फिर वहां से चले गए। उन सबके जाने के बाद आशी ने मुस्कुराते हुए आरव की तरफ देखकर गुड नाइट विश किया और फिर वहां से सोने के लिए चली गई। आरव और वेद गेस्ट रूम में थे। आरव को किसी के साथ रूम शेयर करने की आदत नहीं थी, तो वो वेद को तिरछी निगाहों से देख रहा था। उसके इस तरह देखने पर वेद ने कंधे उचकाकर कहा, क्या मुझे इस तरह देखने से कुछ नहीं होगा, मैं इसी रूम में रुकने वाला हूँ। हाँ, और कोई रास्ता भी नहीं है, आरव ने जवाब दिया और फिर बेड पर लेट गया। उसकी आंखों के सामने बार बार आयु का चेहरा आ रहा था। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर वेद से कहा, वेद क्या हम मिसेस खुराना से पहले भी मिल चुके हैं? कौन मिसेस खुराना, किसकी बात कर रहे हो तुम, और ये नाम मैंने तुम्हारे मुंह से पहले भी सुना है, वेद ने हैरानी से पूछा। फिर उसे याद आया तो वो जल्दी से बोला, सुबह सुबह कई बार नींद में मैंने तुम्हें मिसेस खुराना का नाम बड़बड़ाते हुए देखा है, यहाँ तक कि कई बार तुम चिल्लाकर भी उठते हो। वैसे कौन है तुम्हारी मिसेस खुराना, कहीं तुम आशी की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं उसकी बड़ी बहन की बात कर रहा हूँ, आरव ने जवाब दिया और उठकर बैठ गया। आरव के मुंह से आयु का जिक्र सुनकर वेद ने मुंह बनाकर कहा, हाँ मुझे भी तुमसे उसके बारे में बात करनी थी, तुम दोनों बिल्कुल किसी कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा कर रहे थे, प्लीज बार बार उनके सामने ये मत कहो कि तुम डील के लिए उनकी बेटी से शादी कर रहे हो, ये बहुत रूड साउंड करता है, ऊपर से वो लड़की, उसने तो हद ही कर दी, शादी रुकवाने के लिए उसे पहले शादी करनी है। बाकी सब छोड़ो, तुम उसे मिसेस खुराना कहकर क्यों बुला रहे हो, किसी ने सुना तो बहुत अजीब लगेगा। अजीब तो मुझे लग रहा है कि मैं उसे इस नाम से क्यों बुला रहा हूँ, उसने मुझे गलती से टच किया तो मेरे मुंह से यही निकला, उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है, आरव ने खोए हुए अंदाज में जवाब दिया और अपना सिर पकड़कर याद करने की कोशिश करने लगा। आरव ने काफी देर तक कोशिश की लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया, तो वो थोड़ा इरिटेट होकर बोला, खैर उसे जाने दो, उसे किसी और से शादी करनी है तो वो कर सकती हैं। वेद ने सिर हिलाकर कहा, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, कहीं उस लड़की ने तुम पर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया, तुम्हें उसकी शादी से इतना बुरा क्यों लग रहा है? वेद को आरव का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। आरव को खुद भी काफी अजीब लग रहा था कि वो क्यों बार बार आयु के बारे में सोच रहा है, जब से वो उससे मिला था उसकी आंखों के सामने से आयु का चेहरा जा ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ आयु जल्दी से निर्वाण के घर पर पहुंची। लकीली निर्वाण अब तक घर नहीं आया था, इसीलिए आयु घर समेटने लगी। उसने चारों तरफ अपने कपड़े बिखेर रखे थे और खाने के बॉक्सेस वहां पड़े थे। आयु जल्दबाजी में किचन की सफाई कर रही थी, तभी उसे दरवाजे पर से निर्वाण की आवाज आई, जो हल्के मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, रुको मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है निर्वाण सर, मैस मैंने फैलाया है तो क्लीन भी मैं ही करूंगी, आयु ने जवाब दिया। उसे इस वक्त निर्वाण के सामने काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि किचन सिंक में काफी सारे जूठे बर्तन पड़े हुए थे। निर्वाण ने उसे कुछ नहीं कहा और बर्तन साफ करने लगा।
आयु उसके पास आई और धीरे से कहा, मैंने आपका घर खराब कर दिया ना। जब मैं यहाँ आई थी तब ये काफी क्लीन था और हर एक चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। अब देखिए मैंने सब कुछ फैला दिया। कोई बात नहीं, तुम थोड़ी मैसी हो, लोगों को तुम्हारी इस आदत से दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगती है, निर्वाण ने काफी शांत लहजे में जवाब दिया। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और क्लीनिंग करने लगी। उसके दिमाग में अचानक ही आरव का चेहरा आया तो उसने अपने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, कितना फर्क है इन दोनों में। मुझे आशी के लिए बहुत बुरा लग रहा है जो उसे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है जिसे पैसे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। दूसरी तरफ निर्वाण सर है जहां मेरे मैसी रहने और सब फैलाने की आदत से सब परेशान है, लेकिन पहली बार किसी को इससे दिक्कत नहीं है। अपनी फ्यूचर के चलते ही सही, लेकिन थैंक गॉड मैंने निर्वाण सर को पटा लिया। किचन की सफाई हो जाने के बाद आयु निर्वाण के साथ बाहर आ गई। निर्वाण ने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा, लेकिन आयु कुछ कदम पीछे हटकर बोली, मैंने अभी तक बात नहीं लिया है और मेरे अंदर से दवाइयों की स्मेल आ रही है। आपको पता है ना, पोस्टमार्टम रूम में बदबू बहुत गंदी होती है। निर्वाण ने सार्कास्टिक वे में सिर हिलाया और आयु का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर कहा, मैं बाकी लोगों के जैसा नहीं हूँ, तुमसे ज्यादा टाइम मेरा ऑपरेशन थिएटर और मेडिकल रूम में बीतता है, मुझे इसकी आदत है, बोलते हुए निर्वाण ने आयु को हक कर लिया। आयु के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। आज का दिन उसका कुछ खास नहीं रहा, ऊपर से वो घर गई तो कोई उसके करीब नहीं आ रहा था, जबकि रात होते होते निर्वाण की वजह से उसका बुरा दिन मुस्कुराहट में बदल चुका था।
फीलिंग सैड फॉर यू आशी, तुम्हें आरव खुराना मिल रहा है ना कि निर्वाण कश्यप जैसा लड़का। मैंने सही दाव खेला है, अब देखना आशी, तुम्हें उस गोल्ड डिगर से छुटकारा दिलवा कर रहूंगी, आयु ने मन ही मन कहा।